Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Saksamrita Vasalmi Matao Sneme Vehno Atma Sarubband Taittiriya Upanishad Ke Madhyam Se ब्रह्म के प्रतीक रूप ओंकार की उपासना का प्रकट चल रहा है। इसके अंतर्गत उपासना ओम की कैसे करनी चाहिए, तो उसको लेकर के यहां चर्चा की गई कि हम उस ओम में किस प्रकार का चिंतन करें, किस प्रकार का ध्यान करें, जिसके द्वारा हम उस उपासना से युक्त हो करके अपने उपास्य तक पहुंच सकें। इस प्रकार की चर्चा को लेकर के बतलाया कैसे ओंकार की उपासना करनी है, तब उस ओम की मात्राओं का, उसके पादों का या कहें उसकी व्याहृतियों का स्वरूप बतलाते हुए संकेत किया गया कि उसके अंतर्गत चार मात्राएं हैं, चार पाद हैं। क्रम से एक एक पाद का हमें ध्यान करना है, चिंतन करना है। तो अब कहा कि पहला पाद या पहली मात्रा क्या, तो संकेत किया पहली मात्रा है अकार। अकार का हमें चिंतन कैसे करना है जिससे ओम की उपासना हो, और उस उपासना के माध्यम से हम उस परम शांतावस्था को, समृद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जीवन को सार्थक बना सकें। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि कैसे चिंतन करना है, तो अकार मात्रा से ही बतलाया गया कि कौन, तो भू नाम की व्याहृति को बतलाते हुए, फिर भू नाम की व्याहृति का तात्पर्य बतलाते हुए कहा माने पृथ्वी लोक। क्या संकेत किया, कहा पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक की चर्चा की और पृथ्वी लोक बतलाते हुए फिर उसी भू नाम की व्याहृति के अंतर्गत आगे दूसरा रूप बतलाया वायु। चार चार विभाग किए उसके, चार व्याहृतियों को बतलाते हुए प्रत्येक व्याहृति के चार रूप बतलाए गए। तो भू व्याहृति को लेकर के कहा उसका लोक क्या है, तो कह दिया पृथ्वी लोक। फिर आगे चल करके गए तो कहने लगे वह जो है अग्नि, अग्नि को लेकर चले, कहा अग्नि जो है दूसरा उसका रूप। फिर अग्नि के पश्चात आगे बढ़े तो कहने लगे प्राण, और इस प्रकार से प्राण आदि को बतलाते हुए और चौथे में बतलाया ऋग्वेद। ये चार रूप उस अकार मात्रा की बतलाए। तो अब यहां पर क्या आया, इस मात्रा के अंतर्गत लोक आ गया, अग्नि आ गई, वेद आ गया और प्राण आ गया। ये चार चीजें इस मात्रा के अंतर्गत आ गई। अब इन चार चीजों का आकार रूप मात्रा में चिंतन करना है, ध्यान करना है कि आकार मात्रा किस प्रकार की है, कैसी है, तो उसमें चिंतन करना है कि सारा पृथ्वी लोक जो है वो आकार मात्रा का रूप है। ये सारा पृथ्वी लोक जो है वो आकार मात्रा का या उससे निकली हुई भू व्याहृति का, ये संपूर्ण जो पृथ्वी लोक है वो उसका ही रूप है, अर्थात वही उसमें मूल है, उससे ही यह पृथ्वी लोक की सत्ता सत्तान्वित हुई। अब पृथ्वी लोक को लेकर के फिर कहा कि इस पृथ्वी लोक में ही जो अग्नि है, तेज है, तो वो तो कहने लगे वो भी उस आकार मात्रा का ही रूप है। और फिर उसमें बतलाया वायु को लेकर के, तो वायु क्या है, तो कहा प्राण रूपी जो वायु, वो प्राण रूपी वायु भी उसी आकार मात्रा का रूप है। और फिर वेद क्या है, तो कहा ऋग्वेद। अब यहां पर ये विचार करना कि सकार मात्रा का इस रूप में हमें जब चिंतन करना है, ध्यान करना है, तो क्या मतलब इनका हुआ, तो ये सर्वरूपता इसको बतला दी। तो संकेत किया कि यह जो पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी से संकेत कर दिया हृदय, पृथ्वी से क्या संकेत किया, व्यष्टि की दृष्टि से विचार करें, ये तो समष्टि की दृष्टि से संकेत कर दिया। अब व्यष्टि की दृष्टि से जब हम विचार करने लगे तो कहने लगे हृदय, क्योंकि हमें व्यष्टि से चलना, तो अब व्यष्टि में हृदय हो गया पृथ्वी लोक और अग्नि, क्योंकि बगैर तेज के कोई क्रिया भी नहीं होती, तो अग्नि हो गई। और जो है कहने लगे अग्नि क्या चीज है, उस हृदय के अंतर्गत ही, तो अग्नि जो है उस हृदय में एक तेज विशेष है, उस तेज विशेष को लेकर के ही वो तेज क्या करता, उसमें प्रकाश करता। अग्नि का धर्म क्या है, प्रकाश करना, और बगैर तेज के प्रकाश होता नहीं। तो उस हृदय के अंतर्गत अग्नि, और फिर संकेत किया अग्नि के बाद प्राण, क्या कहा प्राण। प्राण क्या करते हैं, तो क्रिया करते हैं, उस प्रकाश में रह करके प्राण से क्रिया होती है, और जब क्रिया होती है तो क्रिया के द्वारा क्या है, कर्ता भाव भी आता है, भोक्ता भाव भी आता है, उसका फलादि भी होता है, ये सब स्थिति होती। तो अब यहां पर हृदय हो गया पृथ्वी और अग्नि, उसमें प्रकाश विशेष, और वहीं पर क्रियात्मक रूप में वो जो है, जहां प्रकाश है और हृदय है वहीं पर क्रिया, तो क्रिया किसको लेके, प्राण को लेकर। अब वो जो क्रिया होगी तो उस क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता, क्रिया के अंतर्गत जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण किसके द्वारा होता, क्योंकि ऐसे क्रिया तो नहीं हो जाए, और ऐसे क्रिया होगी तो उसका जो है फल आदि सब नहीं बने, तो नियंत्रण करने वाला कौन है, तब कह दिया वेद। कौन वेद है, तो ऋग्वेद, उसका नियंत्रण करने वाला कौन है, ऋग्वेद। ये सब संकेत किया। दूसरे रूप में इसकी चर्चा की गई कि यहां पर हृदय जो है, और हृदय में क्या है, तो उस हृदय में है आकाश, और उसी आकाश में अग्नि का स्थापन हो सकेगा, तो हृदय और हृदय में आकाश, और उसी आकाश के अंतर्गत प्राण का गमनागमन, और उसी का नियंत्रण करने वाला जो है वेद ज्ञान, वो ऋक् संबंधी कह दिया, उसकी चर्चा कर। अब यहां पर जब ये संकेत किया तो मूल में जो हमने कल चर्चा की थी कि जो हमारी नाभि है उसका मूल क्या है, तो संकेत किया फिर दूसरे रूप से, नाभि जो है वो है मूल। नाभि क्या है, कहा मूल है, क्योंकि जितना भी प्ररोहण होता है वो सारा का सारा प्ररोहण का केंद्र बिंदु है नाभि। नाभि से ही सारे प्ररोहण होते हैं, शरीर के अंतर्गत जितने भी प्ररोहण होते हैं, चाहे वो ज्ञान रूप हो, चाहे वो प्राण रूप हो, चाहे अन्य बल रूप हो, सारे के सारे रक्त आदि का प्ररोहण, ये सारा का सारा प्ररोहण का केंद्र बिंदु यदि है तो है नाभि, और नाभि से होता, तो नाभि हो गया उसका मूल, और उस नाभि रूपी मूल से ही जो हृदय में फिर स्थिति आती है, तो बगैर ज्ञान के कोई भी कल्पना या कोई भी क्रिया नहीं, तो हृदय, और हृदय जो है उस हृदय में ही, उस नाभि से जो हृदय, और हृदय में जो है क्या बतला दी, कहा ज्ञान रूपी है, उसके तना की स्वरूपता या उसकी नलिका की स्वरूपता, और उस जब इसको बतलाया और उस पर जो है विद्यमान क्या है, तो कहने लगे उसी नाली से संबंध रखने वाला, नाल से संबंध रखने वाला कौन है, तो कहा पुष्प, जैसे कमल का पुष्प, तो कहने लगे वह कमल का पुष्प क्या है, तो कहा हृदय को ही कमल का पुष्प कह दिया, और उस पुष्प में जो विभिन्न दल रूपता क्या है, एक दल नहीं होता, पुष्प में क्या होते, अनेक दल होते। ऐसे ही हृदय के पुष्प में भी हजारों दलों की चर्चा है। वो दल क्या है, तो दल कोई और नहीं, दल है उस हृदय के अंतर्गत होने वाली वृत्तियां। दल क्या है, उस हृदय के अंतर्गत होने वाली जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां ही क्या है, का दल है। और वह जो वृत्ति रूपी दल है, उन्हीं वृत्ति रूपी दल में मध्य में जो वह दल रूपी कड़का है, उसके शिरोभाग पर जो है कौन है, तो कहने लगे अहम करने वाला है। और अहम करने वाला ही कौन है, का जीव। वो जीव बैठा हुआ, अब जो जीव बैठा हुआ है, तो उस जीव के होने पर फिर आगे संकेत कर दिया मस्तिष्क की स्थिति को लेके, वहीं से फिर सारी ज्ञान की स्थिति होती है। मस्तिष्क के द्वारा फिर सारे नियंत्रण आदि होते हैं, उसके द्वारा सारी क्रियान्वितता होती है, तो ऊपर संकेत कर दिया। तो उससे पहले आज्ञा चक्र सहस्रार आदि की चर्चा करते हुए फिर मूर्धा की चर्चा की, मस्तिष्क की चर्चा की, वहां किसका वास है, तो वह कहने लगे वहां पर जो है अग्नि आदि तो परिच्छिन्न प्रकाश की चर्चा कर दी, और वहां अपरिच्छिन्न प्रकाश की चर्चा करते हुए ज्ञान की चर्चा कर दी। वहां क्या रहता है, का ज्ञान रहता, ये रूप बतला है। अब इसी को नाभि से क्रिया, हृदय से जो है ज्ञान की स्थिति, और उससे भी ऊपर जो है परम ज्ञान की स्थिति बतला दी मस्तिष्क को, ये संकेत कर दिया। अब इसको भी लेकर के संकेत किया देवता शब्द को लेकर के, जहां क्रिया की प्रधानता है वहां देवता कौन है, तो क्रिया करने वाला है ब्रह्मा। क्रिया करने वाला कौन है, ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मा हो गए। और जो ज्ञान करने वाला, ज्ञान की स्थिति में रहने वाला और सारे पोषण आदि को करने वाला है, वो कौन है, विष्णु। वो कहां है, हृदय के अंतर्गत, हृदय में इसका स्थल बतला दिया, देव वहां पर है। और उसके पश्चात परम शांत अवस्था में रहने वाला जो देव है वो कौन है, तो शिव। वो कहां है, कहां, मस्तिष्क पर। ऐसे तीनों देव भी बतला दिए। अब ये चर्चा यहां पर करते हुए इस प्रकार से हम जब चिंतन करें, तो इस चिंतन के करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो उस कड़का पर बैठा हुआ है अहम करने वाला, बीच में कौन बैठा, अहम करने वाला माने ये जीव, और इस जीव को ही उपासना करनी है। अब जीव दोनों तरफ इसकी गति हो सकती, क्रिया की तरफ भी जा सकता है और उधर ज्ञान की तरफ भी जा सकता है, लेकिन क्रिया का रूप वह ग्रहण करते हुए और वह प्राणायाम करता है। प्राण क्या करते हैं, प्रोहण क्रिया करते हैं। और प्राणायाम करता है, तो प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राण का मतलब है प्रवहन करना, आगमन करना, क्रिया विशेष को संचालित करना, और याम का मतलब है नियंत्रण करना, इसलिए यम शब्द इसी से याम बना। तो प्राणों के नियंत्रण का नाम ही है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या, जहां प्राणों को हम नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, तो उसका नाम ही हो जाता है प्राणायाम। चाहे वो कुंभक के द्वारा करो, चाहे रेचक के द्वारा करो, है पूरक आदि, तो वो क्या है, वो प्राणों का नियमन, प्राणों का नियंत्रण। और जब ये हम करते हैं तो प्राण, अब इसी के अंतर्गत क्या आ गए, प्राण, मन और बल, तीन चीजें शरीर में अंतर्भूत होती हैं, उनको लेकर के ही हम क्रिया करने में समर्थ होते हैं। तो अब जो है प्राण भी इसके अंतर्गत है, बल भी इसके अंतर्गत है, और क्या है, मन भी इसके अंतर्गत है। अब प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, तो प्राण को नियंत्रित किया जाता। प्राण जब हमारा नियंत्रित हो जाता है, तो प्राण के नियंत्रित होने पर मन भी नियंत्रित हो जाता है। ध्यान देना इस बात, ये प्रारंभिक प्रथम व्याहृति को लेकर के उपासना की चिंतन की धारा और अपनाने की धारा। तो अब जब हम प्राण का नियमन करते हैं तो प्राण के नियमन करने से, प्राण जब नियमित हो जाता है तो प्राण के आधार पर ही मन की गति होती। प्राण का आधार उसे नहीं मिलता है तो मन में भी गति होती नहीं। तो अब जो प्राण नियमित हो जाता है तो हमारा मन भी नियमित हो जाता, मन का भी नियमन हो जाता है। तो प्राण के नियमित होने पर मन का नियमन, और मन प्राण के नियमित होने पर वल का स्थैर्य। जो वल है, जब तक प्राण नियमित नहीं होता, मन नियमित नहीं होता, या इसी को कह दिया मन की चंचलता, ठीक है। तो जब तक मन नियमित नहीं है, मन चंचल है, तब तक तुम्हारे में जो बल है वो बल भी बिखरता रहता, उस बल में स्थिर नहीं आता। इसलिए संकेत किया कि प्राण के नियमन से मन का नियमन, मन के नियमन से बल का स्थैर्य। और जब बल की स्थिरता हो गई, बल स्थिर हो गया, मन भी जो है आपका विक्षेप से रहित हो गया, नियमित हो गया, और प्राण भी नियमित हो गए, और फिर उस समय जब इस प्रकार से व्यक्ति जब साधना करता है, चिंतन करता है, तो जिसे बोलते हो योग शास्त्र के अंदर ऊर्ध्वरेता, क्या बोलते हो ऊर्ध्वरेता, तब उसकी क्रिया की तरफ गति नहीं होती, ध्यान रखना। ऊर्ध्वरेता का मतलब ही तब उसकी गति किधर होती है, उधर ज्ञान की तरफ, ऊपर की तरफ होती है। और जब ऊपर की तरफ गति होती है तो ऊपर का मतलब है, क्रम से बतलाया तो अंतिम मात्रा क्या बतलाई, महानाम की मात्रा, जिसके द्वारा ही सब महिमान्वित होते हैं, ऐसे उसकी तरफ उसकी गति होती है। और इस प्रकार से जब गति करने लगता है तब उसके अंतर्गत ये चिंतन आता है, तब उसे एक देवत्व की प्राप्ति होती, इसलिए लोक वेद देव आदि की जो चर्चा की, तब उसके अंतर्गत एक देवत्व की प्राप्ति होती है। और जब देवत्व की प्राप्ति होती है तो वल आदि के स्थिर होने से, मन आदि के जो है स्थिर होने से, प्राण आदि के संयमित होने से, जब उसमें देवत्व आ गया, देव विशेष की स्थिति आ गई, तो उसके ऐसे व्यक्ति की आयु भी वृद्ध हो जाती है और देव भाव प्राप्त हो जाता है। और जब आयु वृद्ध हो जाती है तब ऐसे उसको ही क्या कहते हैं, कहा चिरंजीवी। और आप सुनते रहते हो पुराण, मनुष्य की आयु और देव की आयु कितना फर्क, तो कहोगे बहुत फर्क है। देव की एक क्षण की आयु में मनुष्य की वर्षों की आयु बीत जाती, ऐसा सुनते रहते हो। इसका मतलब क्या, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझो। एक उपासक उपासना कर रहा था, उपासना करते करते उपासना के मध्य में ही उसका शरीर छूट गया, मध्य में ही शरीर छूट गया, लेकिन उपासना कर रहा था और उपासना की एक सीमा तक पहुंच भी गया था, लेकिन अभी उपासना उसकी सफल पूर्ण नहीं और उसका शरीर चला गया। शरीर के जाने के पश्चात लेकिन उसमें दैव भाव आ गया था, माने दैवी संपदा आ गई थी, ऐसे कह दो सीधे। अब जब इस प्रकार से वह संपन्न हो गया था तो उसे मनुष्य के शरीर की पुनः प्राप्ति हुई, मनुष्य के शरीर की प्राप्ति हुई, लेकिन मनुष्य के शरीर की तो प्राप्ति हुई, लेकिन उस मनुष्य के शरीर में जो उसे आयु मिली वो देव आयु मिली, देव की आयु मिली, देव की आयु को लेकर के वो मनुष्य शरीर के अंतर्गत आया। और मनुष्य शरीर के अंतर्गत आया, बालकपने में तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, तब उसके अंतर्गत जो देवों में तेज, जो देवों में बल और जो देवों में गति होती थी, तीव्रता आदि, वो सब उसके अंतर्गत दिखने लगी। जब दिखने लगी तो कोई भी कार्य करता था वो क्षण में कर डालता, मनुष्य अपने जीवन भर में करता था वो एक क्षण में उसको पूरा कर लेता, ऐसी उसके अंतर्गत, क्योंकि बल की स्थिरता थी उसमें, ऐसी सामर्थ्य से संपन्न था। और इतना ही नहीं, कहने लगे वो इतना वृद्ध होने लगा, बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा जिस मकान में रहता था कहा वो मकान ही छोटा हो गया। अब जब मकान छोटा हो गया तो कहां रहे, तब उसने लंबे लंबे वृक्षों को काटा और स्वयं ही जो है उन वृक्षों को लेकर के एक मकान का निर्माण किया। और मकान का निर्माण करके और एक घंटे में उसने उस मकान को निर्मित कर दिया, ध्यान देना। और मकान को निर्मित करके फिर उसने सोचा कि अब स्नान कराऊं, आप भी परिश्रम करते उसके बाद सोचते स्नान कराऊं, तो जाकर के वो गंगा जी स्नान करने चला गया। वो स्नान करने गया, जब स्नान करके वापस आया तो देखा आधा मकान टूट गया, आधा मकान टूट गया। आधा मकान जो शेष था उसमें जो है बहुत से लोग इकट्ठे रह रहे हैं वहां। उसने आ करके देखा, उन लोगों से कहा तुम लोग यहां कैसे? लोगों ने कहा ये मेरा घर है। उसने कहा तुम्हारा घर है? अभी मैं इसका निर्माण करके गए और तुम कह रहे हो मेरा घर? लोग कहने लगे हमारी इसमें पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितनी पीढ़ियों से ही हमारे बाप दादों से चला आ रहा हमारा घर है और हम लोग इसमें रह रहे, और तू एक असुर स्वभाव का इतना राक्षस जैसा विशाल काय आ गया और कह रहा मेरा घर। अब ऐसा दोनों में परस्पर जब चर्चा हुई तो वो आश्चर्य करने लगा, कहा अभी अभी मैं इसका निर्माण करके यहां से गया और ये लोग कह रहे हमारी अनंत पीढ़ियां इसमें बीत गई और ये घर मेरा है, कैसा आश्चर्य है, आश्चर्य करने लगा। इतने में एक उन्हीं लोगों में एक वृद्ध पुरुष था, उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि हां भाई हमने ऐसा सुना है। कहा क्या सुना? तो वो अपनी स्मृति और श्रवण को बतलाने लगा। कहा हमारे वंश में ही, हमारे कुल परंपरा में ही एक कोई बड़ा है प्रबुद्ध और बड़ा ही जो है बल संपन्न और बड़ा तेजस्वी जो है कार्य करने वाला व्यक्ति हुआ, हमारे कुल में ही एक पूर्वज हुआ, और उसका ही एक भाई था जिसका नाम था आत्माराम, जिसका नाम था आत्माराम, उसके भाई का नाम आत्माराम था, और फिर उसके बाद आत्माराम का पुत्र हुआ कौन? कहा प्रभाशंकर राम। आत्माराम हुआ, आत्माराम का पुत्र हुआ प्रभाशंकर, और कहने लगे फिर प्रभाशंकर का भी पुत्र हुआ, कहा वो कौन हुआ? कहा अंतरराम। प्रभाशंकर का पुत्र हुआ अंतरराम, और कहने लगे फिर उस अंतरराम का पुत्र हुआ कौन? तो कहने लगे विलासराम। अंतरराम का पुत्र हुआ विलासराम, और विलासराम का पुत्र मैं हूं तन सुखराम। क्या बतलाया? जो विलासराम हुए उन विलासराम का पुत्र मैं हूं तन सुखराम, और मेरा ये सारा परिवार है, ऐसा उसने कहा। तो कहने लगे ऐसा जब उसने कहा तब वो सोचने लगा कि आत्मा राम तो मेरा ही बंधु था, वो देव विशेष शरीर वाला जो था, वो सोचने लगा उसकी बात सुनकर के कि आत्मा राम तो मेरा ही भाई था।